14 भारतवर्ष के सूफी संप्रदाय। कहा जाता है कि भारतवर्ष में सूफी संप्रदाय का प्रवेश ईसा की 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में हुआ। इंडी ई पृष्ठ 17। वैसे हम पहले देख चुके हैं कि सूफी साधक बहुत पहले से ही इस देश में आने लगे थे, लेकिन संप्रदाय के रूप में सूफी मत का प्रवेश बाद में ही हुआ। सूफी संप्रदायों का संगठन भी बाद में ही हुआ। हमें यहाँ यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि सूफी मत के विकास के क्रम में प्रसिद्धि प्राप्त साधकों के शिष्य प्रशिष्य होते गए और उन्होंने भिन्न भिन्न संप्रदायों और उप संप्रदायों का रूप ले लिया। ये संप्रदाय धीरे धीरे अन्य देशों में फैल गए। संप्रदायों का नामकरण भिन्न भिन्न सूफी साधकों के नाम पर हुआ। ईसा की 12वीं शताब्दी तक इन संप्रदायों का रूप स्पष्ट हो गया। सूफी पृष्ठ 159। सूफियों के अनुसार इन विभिन्न संप्रदायों का आविर्भाव इस्लाम के साथ ही हुआ। यह हम देख चुके हैं कि इस्लाम के प्रारंभिक काल में परमात्मा के दंड के भय तथा नरकाग्नि की यातना भोगने की कल्पना से लोग सांसारिकता से विमुख होने लगे और संन्यास की ओर झुके। परमात्मा के दंड का भय उन्हें इस प्रकार से अभिभूत किए हुए था कि लोग सांसारिक माया मोह का त्याग कर एकांत सेवन करने लगे। इस प्रकार के लोगों के धीरे धीरे दल भी बन गए। द ओसन का कहना है कि हिजरी सन के प्रथम वर्ष में मक्का के 45 तथा मदीना के उतने ही लोगों ने एक दल संगठित किया और उन्होंने पैगंबर के प्रति वफादारी की शपथ ली। उन्होंने यह भी तय किया कि प्रतिदिन वे कुछ विशेष पृष्ठ संख्या 435 धार्मिक साधनाएं करेंगे। इन लोगों ने अपने लिए सूफी नाम रखा। दर पृष्ठ 265। प्रायः सभी सूफी संप्रदाय हजरत मोहम्मद से ही अपने संप्रदाय का आविर्भाव बतलाते हैं और हजरत मोहम्मद के बाद चौथे खलीफा हजरत अली से अपना संबंध जोड़ते हैं। खलीफों के क्रम की दृष्टि से भले ही अली का स्थान चौथा हो गया, लेकिन हम आगे चलकर देखेंगे कि सूफी संप्रदायों की दृष्टि से उनका स्थान हजरत मोहम्मद के बाद ही है। अली के साथ संबंध जोड़ने वाले केवल तीन ही हैं। ये तीन बिस्तामी, बख्तशी और नक्शबंदी हैं। अली का स्थान कुछ ऐसे महत्व का हो गया है कि नक्शबंदी भी अपना संबंध उनसे किसी न किसी तरह जोड़ लेते हैं। द ओशन का कहना है कि पैगंबर के जीवित रहते ही अबू बकर और अली के इस प्रकार के संगठित दल कर लिए थे और अपने अपने दल का वे नेतृत्व करते थे। उनकी अलग अलग धार्मिक क्रियाएं थी और दल में शामिल होने वाले को एक विशेष शपथ लेनी पड़ती थी। दर पृष्ठ 266। इन धार्मिक संप्रदायों के विकास में उवैस की कहानी अपना एक महत्व रखती है। वैसे उवैस की कहानी को प्रामाणिक मानने में बहुतों को संकोच है। कहा जाता है कि सबसे पहले उवैस करनी ने सन 657 ईस्वी में कठोर जीवन बिताने वाले फकीरों के एक संप्रदाय का श्री गणेश किया। वही पृष्ठ 266। वह यमन में करण का रहने वाला था। कहा जाता है कि एक दिन उसने बतलाया कि जिब्राइल ने सपने में आकर उसे आदेश दिया है कि परमात्मा ने उसे संसार त्याग करने तथा तापस जीवन बिताने के लिए कहा है। उसका यह भी कहना था कि जिब्राइल ने उसे भविष्य में क्या करना होगा इसकी योजना बता दी है और संगठन के नियमों को भी बता दिया है। वे नियम कुछ इस प्रकार के थे। सब सांसारिक सुखों का त्याग पृष्ठ संख्या 436, समाज से अलग रहना, परमात्मा का रात दिन स्मरण और ध्यान आदि। उहुद की लड़ाई में पैगंबर के दो दांत टूट गए थे, अतएव उवैस ने अपने दांत उखड़वा दिए थे। उसके दल वालों के लिए दांतों का उखड़वा देना आवश्यक था। उसने लोगों को विश्वास दिलाया कि जब वे लोग सोए रहेंगे तब एक देवदूत आकर उनके दांतों को उखाड़ देगा और जागने पर उन दांतों को वे अपने पास ही पड़ा हुआ पाएंगे। यह सहज ही समझा जा सकता है कि उसके संप्रदाय में शामिल होने के लिए बहुत ही कम लोग उत्सुक हुए होंगे। बाद में यमन तक ही उसका संप्रदाय सीमित रह गया। दर पृष्ठ 266-67। प्रथम जो साधकों के दल थे वे बराबर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया करते थे और बाद में चलकर अत तरीक पथ अथवा खानवाद परिवार कहे जाने लगे। उन्हें ही आजकल संप्रदाय कहा करते हैं। इन संप्रदायों में शिष्य प्रशिष्य का सिलसिला कुछ इस प्रकार का है कि संप्रदायों के आदि प्रवर्तकों के उपदेश अथवा विशेष विधि एक के बाद दूसरी पीढ़ी के शिष्य को प्राप्त होती जाती है। संप्रदाय के मुर्शीद या पीर आदि प्रवर्तक के उत्तराधिकारी समझे जाते हैं। यह मुर्शीद या पीर ही उस संप्रदाय का प्रधान समझा जाता है। सभी संप्रदायों का आविर्भाव चार पीरों से माना जाता है, लेकिन ये चार पीर कौन थे इसमें बहुत ही मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि चार पीरों के नाम इस प्रकार हैं। एक, हजरत मुर्तजा अली पैगंबर के दामाद। दो, अली के बनाए हुए खलीफा ख्वाजा हसन बसरी। तीन, ख्वाजा हबीब आजमी जो हसन के द्वारा खलीफा मनोनीत किए गए थे। चार, अब्दुल वाहिद बिन जैद कूफी। इन चारों पीरों के नाम जो इस प्रकार गिनाए गए हैं वे सर्वमान्य नहीं हैं। अली को इन चार पीरों में नहीं गिनते। कहा जाता है कि अली के 70 शिष्य थे जिन्होंने पृष्ठ संख्या 437 अली की मृत्यु के बाद अपने में ही चार पीरों को चुना। इन चार पीरों में कुछ तो हसन हुसैन ख्वाजा कुमैल और बसरा के हसन का नाम लेते हैं और कुछ इन चार नामों में अंतिम दो को ज्यों का त्यों रख देते हैं, लेकिन हसन और हुसैन के बदले उवैसुल करनी और सरयूस शक्ति का नाम लेते हैं। इनमें भी सरयूस शक्ति के बदले कोई कोई अब्दुल्ला बहरी का नाम लेते हैं। सूफी पृष्ठ 162। एक और लिस्ट है जिसमें चार नाम आते हैं। प्रथम के चार नामों के समान ही ये नाम भी हैं, केवल उनके पहले या पीछे रखने में अंतर है। इस लिस्ट में ये नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं। एक, कमिल। दो, इमाम हसन। तीन, इमाम हुसैन। और चार, ख्वाजा हसन बसरी। इन चार पीरों से 14 खानवादे परिवार हुए। वास्तव में ये 14 संप्रदाय हसन अल बसरी के शिष्य प्रशिष्यों से हुए। अभी हमने देखा है कि चार पीरों के नाम में मतभेद है, लेकिन हसन अल बसरी का नाम सब ने समान रूप से रखा है। इस प्रकार से हजरत अली के बाद उसी का नाम महत्व का है। तीन प्रमुख सूफी संप्रदाय चिश्ती कादरी और सुहरावर्दी उसी से संबद्ध हैं और चौथा मुख्य संप्रदाय नक्शबंदी अबू बकर के नाम से युक्त है। हसन के दो प्रमुख शिष्यों से दो संप्रदाय हुए। उसके शिष्यों में ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन जैद से जैदिया संप्रदाय तथा हबीबुल अजमी से हबीबिया। इनमें जैदिया से चार संप्रदाय हुए और हबीबिया से आठ। जैदिया से एक अयाजिया। इस संप्रदाय का नाम किसी किसी ने अयाजिया भी कहा है। इसके प्रवर्तक ख्वाजा फुजैला बिन इयाज या अयाज थे। दो, अधमिया। इसके प्रवर्तक अबू इसहाक इब्राहिम बिन अधम थे। ये बल्ख के रहने वाले थे। तीन, हुबैरिया। यह संप्रदाय अमीनुद्दीन पृष्ठ संख्या 438 हुबैर तुल बसरी से प्रारंभ हुआ। इनके बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त है। कहा जाता है कि ये जुनैद के साथ रहते थे। चार, चिश्तिया। इसके प्रवर्तक ख्वाजा अबू इसहाक शामी चिश्ती थे। हबीबिया से निम्नलिखित आठ संप्रदाय हुए। एक, करखिया। प्रवर्तक शेख मारूफ करखी। दो, सक्तिया। ख्वाजा हसन सारी असकती। तीन, तैफूरिया। अबू मजीद तैफूरुल बिस्तामी। चार, जुनैदिया। अबुल कासिमुल जुनैद। पाँच, गाजरूनिया। ख्वाजा अबू इसहाक गाजरूनी। छः, तरतवसिया। अबुल फरह तरतवसी। सात, सुहरावर्दिया। शेख जियाउद्दीन अबू नजीब सुहरावर्दी। आठ, फिरदौसिया या कुब्रविया। अबुल जनाब अहमद बिन उमरुल खिवकी जो नजमुद्दीन कुबरा के नाम से विख्यात थे। ऊपर के आठ नाम जिस क्रम से दिए गए हैं ठीक वही क्रम सभी नहीं मानते। इन संप्रदायों के नाम निम्नलिखित क्रम से भी हैं। एक, तैफूरिया। दो, करखिया। तीन, जुनैदिया। चार, सक्तिया। पाँच, गाजरूनिया। छः, तरतूसिया। सात, सुहरावर्दिया। और आठ, फिरदौसिया। एक तीसरी लिस्ट में ये सभी नाम इसी क्रम से हैं, लेकिन सक्तिया को जुनैदिया के पहले रखा गया है और तरतूसिया के बदले केवल तूसी संप्रदाय कहा गया है। अधमी और जुनैदी को सब समय सूफी संप्रदायों के अंतर्गत नहीं गिनते, लेकिन तारीखुल औलिया और अनवारुल अरिफीन में ये 14 नाम गिनाए गए हैं। सिक्ती और करखी संप्रदाय बहुत पहले ही खत्म हो गए और उनके अनुयायियों को कादरी संप्रदाय में अंतर्भुक्त कर लेते हैं। फारसी और उर्दू की पुस्तकों में सूफी इतिहास के संबंध में जो लिखा गया है पृष्ठ संख्या 439 उसमें उन्हें कादरी के भीतर रखा गया है। इन संप्रदायों के प्रवर्तक हबीब अजमी के बारे में कहा जाता है कि वे बसरा के हसन के शिष्य थे और उनकी मृत्यु सन 772-73 ईस्वी में हुई। वे अरबी भाषा का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते थे। वे पर्सिया के थे। वे सूद पर रुपया चलाया करते थे, लेकिन अपने कर्ज खोरों के दुख से अत्यंत दुखित होकर उन्होंने यह काम छोड़ दिया और सबका कर्ज माफ कर साधना में लग गए। मारूफ करखी के बारे में हम पहले ही लिख आए हैं। सारी शक्ति करखी का मनोनीत खलीफा था। मुकामात और अहवालों के सिद्धांत की उसने समीचीन विवेचना की है और उसे एक स्पष्ट रूप दिया है। उसका कथन बहुत ही प्रसिद्ध है कि अगर नरक में परमात्मा के दर्शन हो तो उस पर ईमान लाने वाले स्वर्ग की चिंता नहीं करेंगे। उसकी मृत्यु सन 870-71 ईस्वी में हुई। बायजीद बिस्तामी को तैफूर कहकर पुकारते थे। उसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। जुनैद प्रारंभिक काल के सूफियों में एक महत्व का स्थान रखता है। वह इस्लामी धर्मशास्त्र का बहुत बड़ा जानकार था। उसकी मृत्यु सन 909-10 ईस्वी में हुई। बीच बीच में उसकी भी चर्चा हम करते आए हैं। वह बका के सिद्धांत को मानने वाला था और सनातन पंथी इस्लाम की पाबंदियों से कभी दूर नहीं गया। अबू इसहाक गाजरूनी की मृत्यु सन 1037 ईस्वी में हुई और अबुल फरह तरतवसी की मृत्यु सन 1055 ईस्वी में हुई। अबू नजीब जो सुहरावर्दी संप्रदाय का प्रवर्तक था सन 1234 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हुआ। नजमुद्दीन कुबरा उसका शिष्य था। उसकी मृत्यु सन 1221 ईस्वी में हुई। उसके पीर ने उसे स्वर्ग का शेख कहा, इसलिए वह फिरदौसी कहा जाने लगा। भारतवर्ष में चार प्रमुख सूफी संप्रदाय हैं, चिश्तिया, कादिरिया, सुहरावर्दिया और नक्शबंदिया। इसमें चिश्तिया, कादिरिया और सुहरावर्दिया संप्रदाय हसन अल बसरी से संबद्ध है और नक्शबंदिया का पृष्ठ संख्या 440 संबद्ध अबू बकर से है। कादिरिया संप्रदाय को तरतवसिया की शाखा मानते हैं, सूफी पृष्ठ 174, लेकिन इसमें भी मतभेद है। दूसरे मत के अनुसार इसका संबंध तरतवसिया संप्रदाय से इतना ही है कि दोनों जुनैदी संप्रदाय से संबद्ध है, ग्लौ पंट्रा का पृष्ठ 526। चाहे जो हो, इससे यह अच्छी तरह समझा जा सकता है कि भारतवर्ष के तीन प्रमुख संप्रदाय अली से अपना संबंध जोड़ते हैं, जबकि केवल नक्शबंदी अबू बकर से। नीचे की तालिका से यह स्पष्ट हो जाएगा। पृष्ठ संख्या 441। मोहम्मद के पुत्र अली, अली के पुत्र कमिल, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ख्वाजा हसन बरी, ख्वाजा हसन बसरी के पुत्र ख्वाजा हबीब अजमी, अजमी संप्रदाय, ख्वाजा अब्दुल वाहिद, जैदी संप्रदाय। अजमी संप्रदाय के दो संप्रदाय, ख्वाजा तफूर, तफूरी संप्रदाय, ख्वाजा दाऊद, ख्वाजा दाऊद से ख्वाजा मारूफ करखी, करखी संप्रदाय, इससे ख्वाजा सिरी शक्ति, सिक्ती संप्रदाय, इससे शेख जुनैद, जुनैदी संप्रदाय, ख्वाजा अब्दुल वाहिद जैदी संप्रदाय से ख्वाजा फजल बिन अयाज, अयाजी संप्रदाय, अयाजी संप्रदाय से ख्वाजा इब्राहिम अधम, अधमी संप्रदाय, इससे ख्वाजा हजिक, इससे ख्वाजा हबेर, हबेरी संप्रदाय, इससे ख्वाजा अबू और इससे ख्वाजा इसहाक शामी, चिश्ती संप्रदाय। पृष्ठ संख्या 442। जुनैदी संप्रदाय से हजरत मम्स दोलू और शेख अबू बकर, अबू बकर से शेख अब्दुल वाहिद, शेख अब्दुल वाहिद से शेख अबुल फरह, उससे शेख अबुल हसन, उससे शेख अबू सईद, फिर शेख अब्दुल कादिर, कादिरी संप्रदाय, हजरत मम्स दोलू से शेख अबू अली हसन और ख्वाजा अहमद, शेख अबू अली हसन से शेख अबू इसहाफ गाजरूनी, गाजरूनी संप्रदाय, शेख ख्वाजा अहमद से शेख अमोई, शेख अमोई से शेख वजीहुद्दीन, उससे शेख अहमद दीन तूसी संप्रदाय और शेख जियाउद्दीन सुहरावर्दी संप्रदाय, इससे शेख नजमुद्दीन फिरदौसी संप्रदाय। पृष्ठ संख्या 443। ऊपर की तालिका में उच्चारण भेद से ही कुछ नाम भिन्न जैसे प्रतीत होते हैं, जैसे तैफूर के बदले तफूर, हुबैर के बदले हबेर, सारी शक्ति के बदले सिरी शक्ति। दूसरी बात जो ध्यान देने की है वह यह है कि 14 खानवादों में कादरी संप्रदाय का नाम नहीं है, अतएव बहुत कुछ संभव है कि वह तरतवसी संप्रदाय की शाखा मात्र हो और बाद में अधिक व्यापक हो गया हो। इन भिन्न भिन्न संप्रदायों के अपने अपने सिद्धांत और साधन मार्ग हैं। कोई भी मुसलमान किसी भी संप्रदाय में अंतर्भुक्त हो सकता है। इन संप्रदायों में ब्रह्मचर्य पालन पर विशेष जोर नहीं दिया जाता। भारतवर्ष में समय समय पर इन संप्रदायों के सूफी साधक बाहर से आते रहे और अपने संप्रदाय में लोगों को शामिल करते रहे। भारत के चार प्रमुख सूफी संप्रदायों में चिश्ती संप्रदाय का स्थान बड़े महत्व का है। चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक ख्वाजा इसहाक शामी चिश्ती माने जाते हैं, सूफी पृष्ठ 174। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती को इसका प्रवर्तक मानते हैं, ग्लव पंट्रा का पृष्ठ 528, और कितने ख्वाजा मोइनुद्दीन को मानते हैं, दर पृष्ठ 94 तथा सूफी पृष्ठ 175। अबू अब्दाल ख्वाजा इसहाक शामी के शिष्य थे। अबू अब्दाल की मृत्यु सन 966 ईस्वी में हुई। कहा जाता है कि अबू इसहाक एशिया माइनर से आकर चिश्त खुरासान में बस गए, इसलिए इस संप्रदाय का नाम चिश्ती पड़ा। लेकिन बहुत लोग इसे नहीं स्वीकार करते। चिश्त में उनके दफनाए जाने की बात को वे नहीं मानते। उनका कहना है कि वे शाम सीरिया के अक्का स्थान में दफनाए गए। अबू इसहाक शामी मिमशाद अली दिनवरी के शिष्य थे। भारतवर्ष में चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। इसके पहले किस संप्रदाय की क्या विशेषताएं थी, भारतवर्ष में इसने कौन सा रूप ग्रहण किया और इसके कौन कौन से प्रमुख साधक थे, हम यह देख लें कि यह किस प्रकार से यह हजरत मोहम्मद से अपना संबंध जोड़ते हैं और किस प्रकार से इनके शिष्य प्रशिष्य हुए। निम्नलिखित तालिका से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। ग्लव पंट्रा का प्रथम खंड पृष्ठ 527। मुहम्मद से हजरत अली, हजरत अली से इमाम हसन बसरी, हमाम हसन बसरी से ख्वाजा अब्दुल वाहिद, इनसे ख्वाजा फुजैल बिन अयाज, इनसे बल्ख के सुल्तान इब्राहिम बिन अधम बादशाह जिसने गद्दी त्याग दी थी, इनसे ख्वाजा हजीफ अल मर्शी, इनसे ख्वाजा हुबेर अल बसरी, इनसे ख्वाजा अलू व ममशद, उसे ख्वाजा बू अल इसहाक शामी सीरिया के, उनसे ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल प्रथम चिश्ती चिश्त के, उनसे ख्वाजा मोहम्मद जाहिद मकबूल चिश्ती, उनसे ख्वाजा यूसुफ नासिरुद्दीन चिश्ती, इनसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती, इनसे ख्वाजा हाज शरीफ जिंदुई, इनसे ख्वाजा उस्मान हरवानी, इनसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के संत, इनसे दिल्ली के ख्वाजा कुतुबुद्दीन कुतुब साहिब, इनसे शेख फरीदुद्दीन शकरगंज पाक पत्तन के विख्यात बाबा फरीद, इनसे हजरत मखजूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर जो पीरा कलेर रुड़की के पास के थे और साबिरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, और दूसरे निजामी संप्रदाय के प्रवर्तक दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया। चिश्ती संप्रदाय में चिल्ल का प्रचलन है। चिल्ल का मतलब यह है कि साधक 40 दिनों तक किसी मस्जिद में अपना समय बिताता है अथवा किसी कमरे में बंद रहता है। उस समय वह अल्प परिमाण में भोजन करता है, अपना सब समय वह प्रार्थना और ध्यान में लगाता है। वह बातचीत भी बहुत कम करता है। वह इल्ला लाहू पर खूब जोर देता है। इसका जोर जोर से उच्चारण करते हुए अपने शरीर के पृष्ठ संख्या 446 ऊपरी भाग तथा सिर खूब हिलाता है। वह रंगीन वस्त्र धारण करता है। उसके सिर पर बड़े बड़े केश काकुल रहते हैं। अली को परमात्मा और मोहम्मद के बराबर मानते हैं। ई पृष्ठ 289। इस संप्रदाय में संगीत को खूब प्रधानता दी गई है। साधक संगीत सुनते सुनते भावाविष्टावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन का कहना था कि संगीत आत्मा का भोजन है, वही पृष्ठ 289। अतः उन्होंने गाने और संगीत सुनने को आवश्यक माना है। सनातन पंथी इस्लाम में संगीत को निषिद्ध माना गया है। अतः दिल्ली में जब इस संप्रदाय वालों की संगीत मजलिसों का आयोजन अधिक होने लगा तो उलेमाओं ने इसका विरोध किया। उन लोगों ने बादशाह अलतमश से इसे बंद करा देने के लिए कहा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बादशाह बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। कुतुबुद्दीन की वजह से संगीत का प्रचलन और अधिक हो गया था। बादशाह ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया और कहा जाता है कि संगीत की ये मजलिसें लगातार कई कई दिनों तक चलती रहती थीं। सूफी पृष्ठ 215। चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए शिष्य को सबसे पहले नमाज के 2 रकअत कहने पड़ते हैं। इसके बाद उसे कुछ नियम बतलाए जाते हैं जिनका पालन करना शिष्य के लिए आवश्यक है। उसमें उसे किसी प्रकार का ननुनच नहीं करना होगा। ये नियम कुछ इस प्रकार है। अल्लाह के नाम में वह भोजन करता है। उसे समस्त जीवन परमात्मा का स्मरण करते हुए बिताना होगा। उसकी निद्रा मृत्यु के साथ है। उससे कहा जाता है कि तुम फकीर हुए हो तो तुम्हें उन उपदेशों का ध्यान रखना होगा। फकीर शब्द में फे, काफ, ये और रे, ये 4 अक्षर हैं। इसमें फे का मतलब फाका उपवास है, काफ का मतलब कन्नत संतुष्टि है, ये का मतलब याद इलाही परमात्मा का स्मरण है पृष्ठ संख्या 447 तथा रे का मतलब रियाजत प्रायश्चित है। उसे इन चारों के पालन करने के लिए कहा जाता है। मीर उम्मन बागो बहार ग्लव पंट्रा का प्रथम खंड पृष्ठ 528 पर उद्धृत। इसके बाद शिष्य से कहा जाता है कि वह मुर्शिद का ध्यान करें। विशेष रूप से उसे प्रतिदिन ध्यान करना पड़ता है। उसे फिर एक पवित्र नाम बताया जाता है जिसे वह किसी दरगाह में जाकर जपता रहता है। 40 दिनों तक उपवास करते हुए उसे जप करना पड़ता है, तब उसे संप्रदाय की वंश परंपरा बतलाई जाती है। धीरे धीरे साधना करते हुए आगे बढ़ता है और आर्ष तक वह सभी वस्तुओं और स्थानों को प्रत्यक्ष करता है। इस अवस्था में जब दो सितारे नसीर और महमूद एक हो जाते हैं, तब सेहव जागृति की अवस्था उसे प्राप्त होती है और वह लोहे महफूज सुरक्षित तख्ता पर पहुंच जाता है। इस हालत में वह भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देखता है। सभी जगत उसके लिए प्रत्यक्ष हो जाते हैं और तब जब वह अपने हृदय से ध्यान करता है, तकवीम भावाविष्टावस्था की अवस्था उसे प्राप्त होती है। तब वह सर्वव्यापिनी शक्ति को प्रत्यक्ष करता है और नाश तथा न्यास का रहस्य उस पर प्रकट होता है। इसके बाद इसमें जात सत्ता के नाम का चरम रहस्य अपने को उस पर प्रकट करता है। ग्लोपंट्रा का प्रथम खंड पृष्ठ 528-529।